الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. میرے محترم بزرگو، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کی ضروریات کی چیزیں زمین میں محفوظ کر دی اور پھر اس انسان کو بھیجا اور انسان کو ایک وقت کے لیے بھیجا، اس وقت کے بعد اس انسان کو واپس اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس دنیا کو اصل سمجھنے لگے اور آخرت کو فراموش کر دے تو پھر یہ انسان اس پستی میں جا کے گر جاتا ہے کہ جس پستی کا کسی درندے سے تصور ممکن نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو، ایک جہاز روانہ ہوا اور روانہ ہونے کے بعد ایک ساحل پہ پہنچا. ساحل پہ پہنچنے کے بعد جہاز کا جو کپتان تھا اس نے کہا کہ یہاں پر ہم کو اپنے کچھ جہاز کے تقاضے پورے کرنے ہیں، لہذا اتنی دیر تک جہاز یہاں رکے گا، جس کو جو جو تقاضے پورے کرنے ہیں وہ اس جزیرے میں جا کر اپنے ان تقاضوں کو پورا کر لے. اور پھر جہاز کے کوچ کرنے سے پہلے پہلے یہ واپس اپنی اپنی سیٹوں پہ آ جائیں، اپنی اپنی نشستوں پہ آ جائیں. سارے لوگ جہاز سے اتر گئے. جزیرہ بڑا خوش نما تھا، بڑا خوش منظر تھا، تو لوگ اس میں محو ہو گئے. پھر ان میں بھی تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جن کو اپنی منزل کی فکر تھی تو وقت سے کافی پہلے وہ جزیرے کی خوش نمائی کو چھوڑ کر اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے. پھر دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ کوچ کرنے سے کچھ پہلے دوڑے دوڑے آئے تو ان کو اچھی نشستیں تو نہیں ملی، لیکن پٹھرے اور بیٹھنے کی کسی نہ کسی طرح جگہ میسر آ گئی. تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو اس جزیرے کی خوش نمائی میں اور اس کے سحر میں مشغول ہو کر وہیں رہ گئے. دن کے اجالے میں وہ جزیرہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، लेकिन जैसे जैसे रात की तारीकी छाने लगी और सन्नाटे ने अपना बसेरा करना शुरू किया और दरिंदे और चौपाओं की रात की तारीकी में आवाजें आना शुरू हुई, हशरातुल अर्द ने टिटराना शुरू किया, तो फिर उस जजीरे पे एक ऐसी हैबत तारी हो गई कि वहां पर रुकने वाले अफसोस से बिलबिलाने लगे। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि मिसाल देकर फरमाते हैं कि बस यही मिसाल है इस दुनिया की कि दुनिया के अंदर कोई आदमी अपनी मर्जी से नहीं आया और कोई आदमी अपनी मर्जी से वापस नहीं जाएगा। वो गिरोह जो हर वक्त अपनी मंजिल की फिक्र में लगा रहेगा तो उसको अच्छी नशिस्तें भी मिलेंगी और अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएगा, और वो गिरोह जो अपनी फिक्र में लगा न रहा और खेल कूद में लगा रहा लेकिन वक्त से कुछ पहले उसको एहसास हो गया तो वो भी किसी ना किसी तरह मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो गिरोह जो इस दुनिया के अंदर भूल गया कि उसको दुनिया में क्यों उतारा गया था, दुनिया में उसके जिम्मे क्या काम दिया गया था, तो वो इंसान इस दुनिया में भटकता रहेगा हत्ता के उसके मौत का जाम उसके मुंह से टकरा जाएगा और फिर वो अफसोस कर रहा होगा कि काश कि मैं कुछ तैयारी कर लेता। उस वक्त ये इंसान कह रहा होगा कि देखो मुझे एक मौका और दे दो ताकि मैं वापस चला जाऊं, वापस जाकर अब मैं जो काम करूंगा वो आखिरत की तैयारी के लिए करूंगा। सोचने की बात यह है, दुनिया में इतने लोग हैं 7 अरब से ज्यादा लोग, उनमें अल्लाह के इंकार करने वाले भी हैं, अल्लाह की निशानियों के इंकार करने वाले भी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंकार करने वाले हैं, किताबुल्लाह का इंकार करने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात का इंकार करने वाले हैं, लेकिन इन तमाम इंसानों में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो मौत का इंकार कर सकता। ये मौत इतनी यकीनी चीज है और इस बात का भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोई अपनी मर्जी से दुनिया में आया है, और इस बात का भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से दुनिया से जाएगा। तो ना आना मर्जी से ना जाना मर्जी से, और मौत इतनी यकीनी चीज कि जिस यकीन के लिए कोई भी दलील की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही यकीनी बात है जैसा कि सूरज निकला हुआ। कोई आदमी सूरज की किरणें देखने के बाद सूरज का इंकार नहीं कर सकता, इसी तरह मौत यकीनी। लेकिन अफसोस बालाए अफसोस ये कि इसकी तैयारी से इंसान गाफिल, यानी इंसान उस मकाम पे पहुंच गया कि ये इंसान किसी की लाश उठा के लेके जाता है और ये कहता है कि ये मरा है, कल कोई और मरेगा, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं भी मरूंगा। यही वो बात है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमानों की पस्ती का ये आलम होगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को ताज्जुब हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़ फरमाया तो उन्होंने कहा कि उनके दिलों में वहन दाखिल हो जाएगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, वहन क्या चीज है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। जब ये दो चीजें उम्मत में दाखिल हो जाएंगी तो उम्मत अपने आप से भी गाफिल हो जाएगी, अपने नफे से भी गाफिल हो जाएगी। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद में फरमाया कि नसुल्लाह फनसियहुम, कि उन लोगों ने अपने अल्लाह को भुलाया तो अल्लाह के भुलाने का अंजाम ये हुआ कि वो अपने नफे से गाफिल हो गए। तो आज इंसान जब अल्लाह को भुला बैठा, अल्लाह के वादों को भुला बैठा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला बैठा, तो उसके नतीजे के अंदर अब उसकी जिंदगी का महवर ये दुनिया ही है और ये दुनियावी जिंदगी ही है। تو انسان اس غفلت کے اندر پڑے 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 وہ حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے کہ جو حرکتیں کبھی درندہ بھی نہیں کرتا تھا. درندہ جو حرکتیں نہیں کرتا وہ انسان کر رہا ہے, اور پھر بھی وہ اس پہ خوش ہے کہ میں انسان ہوں. وہ پھر بھی اس پہ خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں انسان میں سے وہ ہوں جس کو اشرف کہا جائے, جس کو معزز کہا جائے, جس کا احترام کیا جائے, جس کو سربلندی دی جائے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کا ہم خیال رکھ رہے ہیں, اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں, یا ہم آپس کے اختلافات, آپس کے انتشار اور آپس کی حسد, آپس کی کینہ پروری, آپس کے بغض, آپس میں چال بازیاں, آپس میں نہ معلوم وہ حرکتیں جو کبھی سور بھی نہ کرے, کبھی بھیڑیا بھی نہ کرے, کبھی خنزیر بھی نہ کرے, وہ حرکتیں کر رہے ہیں. انسان اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے اور سوچنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھے وہ کہاں پا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی کام شروع کرتا ہے, اس کام کے اندر انسان ناکام ہو گیا تو ایک چانس ہے دوبارہ اس کو ٹرائی کرے, دوسرا تجربہ کرے, تیسرا تجربہ کرے, چوتھا تجربہ کرے. لیکن انسان کو دیکھیے کہ انسان دنیا کے تجربے میں ناکامی سے بچنے کے لیے وہ کبھی اس سے مشورہ کرتا ہے, کبھی اس سے مشورہ کرتا ہے, کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی ماہر فن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا گرو بتلا دیے کہ جو میں تجربہ کرنے جا رہا ہوں تجارت کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, سیاست کے میدان میں, حرفت کے میدان میں, کوئی اور میدان میں, تو اس تجربے میں میرا میں نام روشن کر دوں. حالانکہ اگر اس تجربے میں ناکامی ہو بھی گئی تو دوبارہ موقع ہے, سہبارہ موقع ہے, چوبارہ موقع ہے. لیکن اگر دنیا کی زندگی کے اندر ناکامی ہو گئی تو موت کے بعد موقع نہیں. انسان سے زیادہ بے عقل کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان پر امانت پیش کی تو ان وہ خوف زدہ ہو گئے, انہوں نے انکار کر دیا. لیکن وحملہ الانسان, انسان نے ذمہ داری کو اٹھایا, انہ کان ظلوما جہولا, انسان بڑا ظالم. اس کو اپنے نفع کا بھی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی ذمہ داری اٹھائی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے, کیا سیکھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا اعمال اختیار کرنے, اس سے غافل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت سے نکالنے کے لیے مختلف انداز سے اپنی امت کو مختلف احکامات دیے. کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, اکثروا ذکر حازم اللذات, کہ لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کثرت سے کرو. وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ موت. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, موتو قبل ان تموتو, کہ موت آنے سے پہلے پہلے مر جاؤ. اب اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ہو, جس طرح امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جزیرے کے اندر, دنیا کی روشنی کے اندر, دنیا کی رانائیوں کے اندر تم بدمست مت ہو جاؤ, غفلت میں نہ پڑ جاؤ, بلکہ تم اس بات کا تصور کرو کہ تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے. اور دنیا کے اندر تم اپنا بینک بیلنس جس طرح بناتے ہو, دنیا کے اندر جس طرح تم اپنے گھر کو بساتے ہو, دنیا کے اندر دنیا کی آسائش کا انتظام کرتے ہو, زیبائش کا انتظام کرتے ہو, آرائش کا انتظام کرتے ہو, زیب و زینت کا انتظام کرتے ہو, اسی طریقے سے تم ہر وقت یہ سوچتے رہو کہ موت سے پہلے پہلے تم اس بات کی تیاری کر لی کہ تم نے قبر کے اندر جو بینک بیلنس کام آنے والا ہے, جو اماؤنٹ کام آنے والی تمہارے پاس سیو ہو گئی, حشر کے اندر جو اماؤنٹ سکہ کام آنے والا ہے تمہارے پاس جمع ہو گیا, میزان کے اندر ترازو کے وقت جو چیز کام آنے والی ہے تمہارے پاس وافر مقدار میں ہو گئی, پل صراط میں جو سکہ کام آنے والا ہے وہ ترازو کے پل صراط پہ کام آنے والا سکے کی تیاری ہو گئی, इस बैंक बैलेंस को भी कभी ऑडिट किया करो, इसको भी देखा करो, और देखा करो कि तुम्हारे दौलत के अंदर जो आखिरत की तुम जमा कर रहे हो कहीं रद्बो याबिस तो जमा नहीं हो गया। रद्बो याबिस क्या मतलब? रद्बो याबिस का एक मतलब तो यह है कि आदमी रद्बो याबिस इस सेंस के अंदर जमा कर ले कि इसने ये किया कि गुनाह भी है नेकियां भी हैं। और दूसरी सूरत यह है कि रद्बो याबिस की सूरत जो कुरान ने बयान की वो रद्बो याबिस की सूरत यह है कि इंसान नेकियां कर रहा है लेकिन रियाकारी को के जरिए से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मसल सफवान अलैहि तुराब फअसाबहु वाबिल फतरकहु सलदा, कि ऐसे लोगों की मिसाल जो रियाकारी के लिए काम करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक चटियल, एक चिकना संगलाख चट्टान हो उसके ऊपर मिट्टी जमा हो जाए, कोई आदमी उस पर दाना डाल दे, जब बारिश हो हवा चले तो जाहिर सी बात है वो चिकनी जमीन है, चिकना पत्थर है, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा चटियल हो जाएगा, उससे कोई फल निकलने वाला नहीं, कोई फसल निकलने वाली। इसी तरीके से कुरान करीम में इसकी दूसरी मिसाल यूं दी गई कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक आदमी अपनी जवानी उसने खूब दौलत जमा की और उस दौलत के जरिए से उसने एक बाग सजा लिया और उस बाग के अंदर खूब फल पैदा हो रहे हैं, फसल हो रही है। अब जब बुढ़ापे का वक्त आया, उस बुढ़ापे के वक्त के अंदर उसकी छोटी छोटी औलाद है और उसकी पूरी उम्मीद का महवर यही बाग है। अब एक खतरनाक किस्म का बगोला आया, उसने उस बाग को जला दिया, तो बतलाओ उस आदमी पर कैसी नाउम्मीदी की कैफियत गुजरी थी कि अब जवानी भी नहीं, कुवा मजबूत भी नहीं कि वो दोबारा इस बाग को बसा सके, औलाद भी जवान नहीं जो इसका बाजू बन सके, तो कैसी नाउम्मीदी के आलम में ये इंसान होगा। तो कुरान ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीब गरीब उसलूब में इस बात को बयान किया कि देखो तुम अपनी आखिरत की तैयारी के अंदर कहीं रियाकारी के जरिए से जो तुम बैंक बैलेंस जमा कर रहे हो उसको जाया तो नहीं कर रहे। जैसा कि एक आदमी नेकियां कर रहा है, खूब नेकियां कर रहा है, लेकिन नेकियां करने के अंदर वो सूदी लेन देन कर रहा है, सूदी लेन देन के जरिए से वो नेकियों को बर्बाद कर रहा है। जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा हाथ उठा के कहता है परागंदा बाल है, या रब्बी या रब्बी या रब, वमाकलुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन वमलबसुहु हरामुन फअन्ना युस्तजाबुला, कि उसका पहनना हराम का, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसकी दुआ कैसे कबूल की जाए, उसके आमाल कैसे कबूल किए जाए। इसी तरीके से एक आदमी नेकियां कर रहा है लेकिन खल्तमल्त कर रहा है, मिलावट कर रहा है, नापतोल में कमी कर रहा है, आला बोल के अदना चीज दे रहा है, रजील चीज दे रहा है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो इंसान के आखिरत के बैंक बैलेंस को बर्बाद करने वाली। इसी तरीके से नेकियां कर रहा है, हुकूकुल्लाह तो अदा कर रहा है, हुकूकुल इबाद की फिक्र नहीं, मां बाप का एहतराम नहीं कर रहा, मां बाप को अजियत दे रहा है, बहन भाइयों को अजियत दे रहा है, महल्ले वालों को अजियत दे रहा है, शहर वालों को अजियत दे रहा है, मुल्क वालों को अजियत दे रहा है, तो वो भी खतरे के अंदर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर तो ऐसे आदमी को मुफलिस करार दिया है, हकीकी मुफलिस। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया कि बतलाओ कि मुफलिस कौन है, तो सहाबा ने कहा कि वही आदमी जिसके पास पैसा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हकीकी मुफलिस वो है कि जिस आदमी के पास खूब नेकियां हो लेकिन उसने हुकूकुल इबाद को जाय किया हो और कल हशर के मैदान के अंदर सारे अहले हुकूक आकर हक का मुतालबा कर रहे हो, तो अब उसकी नेकियां ले लेके दूसरों को दी जाती रहे, आखिर में नौबत यहां तक आ जाए कि नेकियां खत्म हो जाए, हज का अंबार था, उम्रों का अंबार था, नवाफिल का अंबार था, नमाजों का अंबार था, सदकात का अंबार था, वो सारे अंबार खत्म हो गए फिर भी आले हुकूक खड़े हैं। अब आले हुकूक खड़े हुए हैं तो इन आले हुकूक ने मुतालबा किया तो अब देने के लिए कुछ नहीं, वहां सिक्का जो है चलने वाला सिक्का वो नेकियां हैं, अब उसके पास नहीं है, तो उनके गुनाह इसके सर पर डालकर जहन्नम में फेंक दिया। ये है हकीकी मुफलिस। تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو. دیکھو دنیا کے اندر اگر تم ناکام ہو گئے تو تم آنسو بہا کر تم پھر بھی واپس کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن اگر موت کا جام منہ سے ٹکرانے کے بعد تمہارے لیے ناکامی مقدر کر دی گئی تو پھر تمہیں کامیابی کا کوئی راستہ ملنے والا نہیں. تو اب ہم سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی ناکام ہوتا ہے تو گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، افسردگی چھا جاتی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے زخموں پہ پھایا رکھ سکتے ہیں. ماں آتی ہے، شفقت سے ہاتھ رکھتی، میرے بیٹے میرے لال کیا ہو گیا تم؟ کوئی بات نہیں بیٹا، دوبارہ ہمت کرو. میدان میں شاہ سواری گرتے، ادھر سے بیوی آ رہی ہے کہ سرتاج آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم فاقے کر لیں گے لیکن آپ ہمت کی. ادھر سے بھائی بہن آ رہے ہیں، لیکن حشر کا میدان ایسا ہیبتناک میدان ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا أَجَاتِ الصَّاخَّةَ، یا یہ دل دہلانے والا جب دھماکہ ہو جائے گا، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہو، وہ امی ہی وہ ابھی اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، جس ماں نے اپنے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ کے اندر سنبھالا ہوگا اور اپنے خون کو اس کو پلا کر 2 سال اس کو سیراب کیا ہوگا، جس ماں نے بھوکا رہ کے اس کے پیٹ کو پالا ہوگا، وہ ماں سے بھاگ رہا ہوگا. ذرا سوچو تو انسانوں، تم کس غفلت میں چلے گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں، موتو قبل ان تموتو، ذرا استحضار کرو کہ دنیا میں گرنے کے بعد تو اٹھ سکتے ہو لیکن آخرت میں گرنے کے بعد نہیں اٹھ سکو گے. آج اگر ہم پورے اپنے اطراف کے اندر دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، تو نظر یہی آتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. زبان پر تو اللہ ہے لیکن اللہ دل میں نہیں، اللہ کا تصور تو ہے لیکن وہ تصور دھندلا سا ہے، جیسے کسی نعوذ باللہ ہنومان کا تصور ہوتا ہے، کسی کالی دیوی کا تصور ہوتا ہے کہ جس کے سامنے پرہات رکھ دی جائے، جس کے سامنے کچھ رکھ دیا جائے اور اس سے دعا مانگ لی جائے، پھر ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے، وہی سربلندی دینے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن اس اللہ سے ہم غافل ہیں. ہم اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے عہدوں میں بھروسہ کرتے ہیں، اپنے منصب میں بھروسہ کرتے ہیں، چند دن کی جو بھی چیز میسر آ گئی اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور غفلت میں پڑے رہے. پڑے رہو لیکن یاد رکھو کہ یہ غفلت اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جس مقام کے بارے میں آتا ہے کہ انسان حسرت سے روئے گا روئے گا روئے گا حتیٰ کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے نالیاں بن جائیں گی اور آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس کے اندر سے خون جاری ہو جائے گا، اور انسان حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کو خود چبا جائے گا اور افسوس سے پکارے گا پکارے گا پکارے گا، 1000 سال بعد جواب آئے گا مالک جہنم کے داروغہ کا کہ کیا بات ہے، اور 1000 سال کے بعد جواب آنے کے بعد جب اس سے فریاد کی جائے گی تو مالک اللہ سے دریافت کریں گے تو 1000 سال بعد جواب آئے گا اخسا ولا تکلمون. یہ لفظ عربی کے اندر کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سعو ولا تکلمون، دھتکار دیے جاؤ گے اور اب بات نہیں کی جائے گی تم سے. اور وجہ کیا بیان کی جا رہی ہے؟ قرآن میں غور کیجئے، انہ کانا فریق من عبادی، کہ تمہیں یہ جو پھٹکار مل رہی ہے اس لیے کہ تم نے حقوق العباد کو غصب کیا تھا. یہ حقوق العباد کوئی معمولی چیز نہیں، جتنے حج کر لیجئے، جتنے روزے رکھ لیجئے، جتنے اپنے ساتھ القابات لگا لیجئے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی تو الٹے لٹکا دیے جائیں گے، 76 لگائے جائیں گے 76، और वो भी छित्तर कोई चमड़े के नहीं होंगे, अंगारे के होंगे, और मारने वाले कोई तारा मसीह नहीं होंगे, मारने वाले वो फरिश्ते होंगे, ला यासुन अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं करते। मारने वाले वो फरिश्ते होंगे कि जिनकी कुव्वत सारी दुनिया की कुव्वत से ज्यादा कुव्वत, सारे बड़े बड़े ताकतवर जमा हो जाएं, एक फरिश्ते के एक बाजू की कुव्वत के बराबर नहीं पहुंच सकते। फरिश्तों के बारे में आता है कि जब वो गुर्ज मारेंगे तो 70 हाथ मुर्दा जमीन के अंदर धस जाएगा और उसकी चीख इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती, और फिर वो अपने उन नाखूनों से जो नाखून लोहे के होंगे उन नाखूनों से उसको दोबारा निकालेंगे, फिर गुर्ज मारेंगे। ये हकायक हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मुख्तलिफ अंदाज से मुतवज्जे फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मुख्तलिफ अंदाज से खिताब फरमाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मूतू कबल अन तमूतू, अपनी मौत से पहले पहले मर जाओ, यानी मौत की तैयारी कर लो, मौत का इस्तेहजार कर लो। जिस तरीके से तुम आखिरत का सफर करने के अलावा दुनिया का सफर करते हो तो तुम देखो कितना एहतमाम करते हो, पहले मालूम करते हो जहां जाना है वहां अच्छा होटल कौन सा है, वहां अच्छा महल्ला कौन सा है, वहां कौन सी चीज कहां मिलती, कौन सी चीज सस्ती मिलती, वहां का सिक्का क्या है, वहां इमरजेंसी हो जाए तो किससे मदद हासिल की जा सकती है, इमरजेंसी नंबर क्या है, टिकट का ऑफिस कहाँ है, कन्वेंस किस नौयत की होती है, अच्छी कन्वेंस कौन सी होती है, कैसे लोग हैं, वहां किस तरह का मामला करना चाहिए, वहां किस तरह वक्त गुजारना चाहिए, कितने वक्त के लिए जाना चाहिए, कौन कौन से मकामात हैं जिन मकामात पे जाना चाहिए, कौन सी जगह जहां पर हमारी जरूरत पूरी होगी, फिर वहां की तैयारी, फिर दुनिया के यहां पर यहां की तैयारी के लिए टिकट कहां से मिलेगा, सीट कंफर्म होनी चाहिए, और सामान कौन कौन सा ले जाना चाहिए, फहरिस्त तैयार होती है, तमाम चीजें होती हैं। हालांकि वो सफर ऐसा सफर है कि जिस सफर से कुछ दिन बाद वापस आना है, लेकिन उसके लिए इतना एहतमाम, और आखिरत का सफर ऐसा जिससे वापस नहीं आना उसके लिए इतनी गफलत। एक मौके पर हजरत बहलूल ने हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बैठे हुए थे, हारून रशीद ने अपनी जेब से एक छड़ी निकाली और छड़ी निकालने के बाद कहा कि बहलूल दुनिया में कोई बेवकूफ हो तुमसे ज्यादा तो तुम इसको दे देना। बहलूल ने खामोशी से, ये बुजुर्ग थे अल्लाह वाले थे, इन्होंने खामोशी से रख ली। कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली कि हारून रशीद बीमार हैं और मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो हारून रशीद की खिदमत में हाजिर हुए। हारून रशीद के ये अजीज भी होते थे, चचाजाद भाई या ददियाली रिश्तेदारों में कोई कजन्स थे। तो ये हारून रशीद की खिदमत में आए और आके कहा, अमीरुल मोमिनीन कैसी तबीयत है? तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अब सही नहीं, बस सफर दरपेश है। तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या आपने सफर के लिए लश्कर भेज दिया? तो उन्होंने कहा कि बहलूल तुम बेवकूफी रहोगे, हमें जो सफर दरपेश है उस सफर के अंदर कोई साथ नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन उस सफर के लिए आपने क्या मुख्तलिफ लोगों की तैयारी इंतजाम के लिए भेज दिया? उन्होंने कहा, बहलूल तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? इस तरह उन्हें 6-7 सवाल किए। अमीरुल मोमिनीन ने हर सवाल के जवाब में कोई ना कोई बात कही। तो हजरत बहलूल ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन हम तो दुनिया में देखते रहे कि आपको जब कोई अगला सफर दरपेश होता तो 2 महीने पहले वहां उसके प्रोटोकॉल का इंतजाम होता था और पहले से लाहौ लश्कर चला जाता था कि आपके इत्मीनान का इंतजाम कर ले, अमन कायम रखे। अब आपको एक ऐसा सफर दरपेश है जिससे वापसी नहीं है और उस सफर के लिए आपने ना कोई लश्कर भेजा, ना कोई आगे बैंक बैलेंस भेजा, ना कुछ किया। तो अब आपकी एक अमानत मेरे पास रखी हुई है, सारी दुनिया के अंदर मुझे आपसे ज्यादा हमदर्दी के लायक कोई नहीं मिला। उन्होंने वो लकड़ी उसके हाथ में रखी। अमीरुल मोमिनीन ज़ारो क़तार रोने लगे। और कहने लगे बहलूल वाकया यह है कि हम तुमको बेवकूफ समझते रहे लेकिन तुम ही दाना थे, हम ही बेवकूफ थे। इसी तरीके से ये बहलूल वही बुजुर्ग हैं कि एक मौके पे बाजार में बैठे हुए थे, बाजार में बैठे हुए बातें किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, तो एक साहब गुजरे, पूछा बहलूल तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे कि मैं जो है अल्लाह के बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा। तो उन्होंने कहा फिर क्या अंजाम है? तो लोग उन्होंने कहा कि अल्लाह तो मान रहे हैं लेकिन बंदे नहीं मान रहे। फिर कुछ अरसे बाद देखा कि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, तो लोगों ने पूछा कि बहलूल अब आप यहां क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अब बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये बतलाइए कि अंजाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि बंदे मान रहे हैं लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा। तो आज हकीकत यह है कि जो अल्लाह से सुलह करवाने चाह रहा है तो वो बोझ है। मियां हमारी तरक्की में आप रुकावट हैं, हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, हम दुनिया के मसरूफ लोग हैं, हमें डिस्टर्ब ना कीजिए। भाई आप डिस्टर्ब मत होइए, लेकिन जिस वक्त आपको एहसास होगा उस वक्त फिर आप ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे आप क्यों जो भी ऐसा करें वो कफे अफसोस मलता रह जाए, उस वक्त से डरिए। उस वक्त आने से पहले पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मूतो कबल अन तमूतो, मौत से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी कर लो। और दूसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हासिबू कबल अन तुहासबू, कि अपना मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अब अपना मुहासबा कैसे किया जाए? तो अल्लाह जजाए खैर दे उलमा इकराम को और बुजुर्गान दीन को कि उन्होंने उसके लिए भी फार्मूले दिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक फार्मूला ये दिया, फरमाते हैं कि देखो जब तुम सुबह उठो तो उठने के बाद एक मुआहिदा कर लो अपने आप से, और वो मुआहिदा क्या है कि आज के दिन मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के दिन मैं सूद नहीं खाऊंगा, आज के दिन मैं धोखा नहीं दूंगा। इस तरह तसव्वुर कीजिए, और अल्लाह के जो अहकामात हैं उन अहकामात का अल्लाह से वादा कर ली, और साथ साथ हुकूकुल इबाद के सिलसिले में अल्लाह से मुआहिदा कर लीजिए कि अल्लाह के बंदों के जो हक मेरे ऊपर है मैं उसमें कोताही नहीं करूंगा। ये तो मुआहिदा हो गया। हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस मुआहिदे के बाद तुम अल्लाह से तौफीक भी मांगो, क्योंकि तौफीक वहीं से आती है कि ए अल्लाह मैंने मुआहिदा कर लिया है, अब इस मुआहिदे की पासदारी करने की मुझे तौफीक अता फरमाई। फिर उसके बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुआहिदे के बाद तुम सारा दिन मुराकबा करते रहो, कोई भी काम करने शुरू करो सोच लो कि उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, अगर खिलाफ वर्जी नहीं हो रही तो कर गुजरो, अगर खिलाफ वर्जी हो रही तो उसको छोड़ दो। तो ये मुराकबा सारा दिन चलता रहे। फिर उसके बाद जब शाम हो जाए घर को वापस आओ तो मुराकबे के बाद मुहासबा करो, मुहासबा करो कि मैंने जो मुआहिदा किया था इस मुआहिदे की पासदारी मैंने की या नहीं की। अगर मैंने इस मुआहिदे की पासदारी की तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मैंने इस मुआहिदे की पासदारी नहीं की तो फिर उसके बाद इस पे इस्तिग़फ़ार तौबा हो, और इसके लिए कोई मुनासिब सी सजा तजवीज की जाए, इसको कहते हैं मुआकबा। चौथा काम है मुआकबा कि अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो गई तो अब इस नफ्स को सजा देनी है। नफ्स को सजा कैसे देनी है कि भाई तुमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की लिहाजा अब तुम बिस्तर पे उस वक्त तक नहीं जा सकोगी जब तक कि चार रकात नफिल नहीं पढ़ो। दुनिया से आप एक घंटे बात करवा लीजिए लेकिन दो रकात पढ़ना मुश्किल है, लेकिन जब आसानी हो जाएगी तबीयत के ऊपर आसानी हो जाएगी तो फिर दो रकात क्या सौ रकात पढ़ना आसान हो जाएगा। तो चौथा काम जो करना है वो चौथा काम है मुआकबा कि अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो गई तो अपने नफ्स को सजा दे दो, लेकिन सजा भी ऐसी नहीं कि जिसके नतीजे में नफ्स सरकश हो जाए, और ऐसी हल्की भी नहीं कि जिसके सजा का एहसास भी ना हो। तो ये जब चार काम हम करते रहेंगे और ये मरते दम तक करना है। और बात तो यही है भैया कि इंसान दुनिया के अंदर जब तक है खतरे के अंदर है, इंसान कभी भी खतरे से बाहर नहीं निकला हुआ, हर वक्त खतरे के अंदर है। अगर इंसान चार रकात पढ़ रहा है तो खुश हो जाए कि मैं चार रकात पढ़ रहा हूं, मैंने आज चार रकात नफिल पढ़ ली, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है इस माना के अंदर, ये तौफीक में तो अल्लाह का शुक्र, लेकिन इस माना के अंदर कि मैं कोई तीस मार खान बन गया, क्योंकि असल मकबूलियत तो अल्लाह के यहां है। अगर अल्लाह ने कबूल किया तो मैं मकबूल, और अगर अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो मैं नामुराद। तो दुनिया कितनी भी तारीफ करती रहे, दुनिया कितना भी अच्छा भला कहती रहे, दुनिया की तारीफ से कुछ मिलने का नहीं सिवाय खुसरान के, हलाकत के, और कुछ नहीं मिलने का। असल तो अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह के यहां अगर आमाल कबूल तो कबूल, अल्लाह के यहां अगर ना मकबूल तो ना मकबूल। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, आज के दिन हम ये सोचे कि उम्मत जिस रास्ते पर चल निकली है उस रास्ते से उम्मत को वापस लेके आना है, और वापस लाने के लिए जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के लिए पैगंबर हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब अता की गई है वो कयामत तक की किताब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कामयाबी के उसूल बताए गए वो कयामत तक के लिए, जो नाकामी के उसूल बताए गए वो कयामत तक के लिए है, जो इज्जत के उसूल बताए गए वो भी कयामत तक के लिए है, जो जिल्लत के उसूल बताए गए वो भी कयामत तक के लिए। तो इन्हीं उसूलों के ऊपर हम अपनी कौम की तामीर करें, इन्हीं उसूलों के ऊपर हम अपने दोस्तों को दावत दें, उनको याद दिलाएं कि भाई देखो दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहना, एक दिन जाना है, एक दिन अपने हर किए का अमल का जवाब देना है। फमन यअमल मिथका ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथका ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो नेकी करेंगे देख लेंगे, जो बुराई करेंगे देख लेंगे, और अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं। आज असल बात यह है कि आखिरत के ऊपर यकीन खत्म हो गया, अल्लाह पर यकीन खत्म हो गया। अब इंसान क्या समझ रहा है, इंसान समझ रहा है कि कामयाबी के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफी, और फिर उसके बाद अल्लाह मियां से दुआ करते हैं, अल्लाह मियां सुन नहीं रहे, भाई इतने मुसलमान हैं फिर भी जलील हो रहे हैं। तो भाई बात यह कि नफ्से मुसलमान होना काफी नहीं है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सराहत के साथ फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, क्या इन लोगों का ख्याल यह है कि सिर्फ ये कह दें कि हम ईमान लिए बस काफी, अब कामयाबी सरबुलंदी सब मिलती रहेगी, कोई आजमाइश से गुजरना नहीं पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमल इख्तियार करना पड़ेगा कामयाबी के लिए, सरबुलंदी के लिए, इज्जत के लिए। अपनी औलाद की भी तरबियत करनी है, अपने महल्ले वालों की भी तरबियत करनी है, अपने दोस्त अहबाब की भी तरबियत करनी है, और ये ना सोचिए कि मैं क्या। भाई बात यह है कि जब कोई आदमी दावत देता है तो सबसे पहले उस खुद उसका यकीन बनता है। तो आप जब कहेंगे भाई आखिरत आने वाली है, मौत का वक्त मुतय्यन है, और मौत अपनी मर्जी से आती है, किसी की मर्जी से नहीं आती, मौत के बाद दोबारा चांस नहीं मिलने का है, और दुनिया के अंदर नाकामी जो है उसके बाद फिर कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन अगर आखिरत में नाकाम हो गए तो दोबारा कामयाब नहीं हो सकती, ये तमाम बातों का इस्तेजार करने की जरूरत है और इनके लिए कोशिश करने की जरूरत है। तो वो वक्त दूर नहीं कि जब हम नेकियों के अंदर आगे बढ़ने वाले बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और कहने वाले को ज्यादा तौफीक अता फरमाए, और सुनने वालों को भी तौफीक अता फरमाए, और हम सबको कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।